पेश है आज के मुख्य समाचार वैशाली जैन के साथ। ऑस्ट्रेलिया पहुंची नोवावैक्स कोविड रोधी टीके की पहली खेप। भारत में सुप्रीम कोर्ट में फिर शुरू हुई फिजिकल सुनवाई। और ऑस्ट्रेलिया महिला एशेज में अपने अजेय रिकॉर्ड बनाए रखने की तैयारी में। और अब खबरें विस्तार से। नोवावैक्स कोविड रोधी टीके की पहली खेप सिंगापुर से ऑस्ट्रेलिया पहुंच गई है। इस खेप में नोवावैक्स की 3 मिलियन खुराकें हैं जो 21 फरवरी से वितरित की जाएंगी। ऐसा माना जा रहा है कि इस प्रोटीन आधारित टीके के दूसरे mRNA टीकों की तुलना में कम दुष्प्रभाव होते हैं। इसका अर्थ ये है कि जनसंख्या का वो छोटा हिस्सा जो चिकित्सीय कारणों से टीका नहीं लगवा पाया था, अब एक बेहतर विकल्प के साथ टीके के लिए जा सकता है। फेडरल संसद में आज दोपहर धार्मिक भेदभाव विधेयक पर बहस जारी रही। ये प्रस्तावित कानून व्यक्तियों को अपने धर्म का पालन और प्रचार बिना किसी भेदभाव के करने की आज़ादी देगा, पर चिंताएं जताई जा रही हैं कि ये विधेयक समलैंगिक और विविध लैंगिक पहचान वाले समुदायों यानी LGBTQI+ समुदायों को पर्याप्त सुरक्षा नहीं देता। प्रधानमंत्री स्कॉट मॉरिसन ने इस विधेयक को पारित करने के अपने संकल्प को दोहराया है।
They could have their religious faith and they could have their belief and they could have their community and they could have their culture and that they would not be discriminated against. I don't want them to be discriminated against, and before the last election I said I wanted there to be laws in place that ensured their freedom from that discrimination. And that's what this is about.
वित्त मंत्री साइमन बर्मिंगम ने इस बात की पुष्टि की है कि धार्मिक भेदभाव विधेयक के प्रस्तावित संशोधनों में धार्मिक स्कूल ट्रांसजेंडर बच्चों को उनकी लैंगिक पहचान के आधार पर स्कूल से निकाल सकेंगे। हालांकि ये स्कूल गे छात्रों को इस आधार पर स्कूल से निष्कासित नहीं कर सकेंगे। श्री बर्मिंगम ने ABC रेडियो नेशनल से कहा है कि ऑस्ट्रेलियन लॉ रिफॉर्म कमीशन लैंगिक पहचान के आधार पर भेदभाव से संबंधित कानूनों की समीक्षा करेगी। समीक्षा में एक साल तक का समय लग सकता है।
So I understand the proposal that is put forward is to repeal the exemption as it relates to students being exempted from the Sex Discrimination Act on the basis of their sexual orientation.
But not gender. Now
it doesn't go further than that. Those other matters, as I understand it, would still be subject to a relatively quick, within 12-month review by the Australian Law Reform Commission to try to address the best way to be able to enact any other changes without undermining certain issues around same-sex schools or other matters.
विपक्ष नेता एंथनी अल्बनीजी का कहना है कि संसद को इस विधेयक पर एकमत होना जरूरी है।
We support the idea, of course, that you shouldn't be discriminated against on the basis of your faith, just as you shouldn't be discriminated against on the basis of your gender or your race or your sexuality. And it shouldn't be beyond the capacity of the parliament to deal with this in a way that builds consensus.
वहीं विकलांगता प्रतिनिधि समूह इस विधेयक के दुष्प्रभावों को लेकर चिंतित हैं। द ऑस्ट्रेलियन फेडरेशन ऑफ डिसेबिलिटी ऑर्गेनाइजेशंस और दूसरे प्रतिनिधि समूहों ने फेडरल सरकार को पत्र लिखकर इस विधेयक की खिलाफत की है। इन समूहों को खासकर इस विधेयक के उन अनुच्छेदों से समस्या है जो स्टेटमेंट्स ऑफ बिलीफ की आज्ञा देते हैं। इसका अर्थ ये होगा कि जब तक एक व्यक्ति अपने धर्म की बात कर रहा है, वह किसी की भी निंदा कर सकता है, यहाँ तक अपमान भी कर सकता है। कई विकलांग लोगों का कहना है कि उनसे कहा गया है कि उनकी विकलांगता उनके या उनके माता पिता के पापों का फल है, या यह कि दुआ से उनका इलाज हो सकता है, या यह कि उनके पूर्व जन्मों के कर्मों के कारण वे इस विकलांगता को भोगने के ही लायक हैं। वहीं लोकसभा के स्पीकर ने आधिकारिक तौर पर संसद भवन में हमले, दुर्व्यवहार, धमकाने और उत्पीड़न का शिकार हुए लोगों से क्षमा याचना की है। स्पीकर एंड्रू वॉलेस ने ये ऐतिहासिक वक्तव्य 2022 के पहले सत्र के पहले दिन पर दिया। ये वक्तव्य सेक्स डिस्क्रिमिनेशन कमिश्नर केट जेनकिंस की संसद में काम की विषैली संस्कृति पर समीक्षा के 28 सुझावों में से पहला सुझाव था। श्री वॉलेस ने माना कि संसद अपने काम की संस्कृति में कोई भी बदलाव नहीं कर पाई है और इसके लिए वे क्षमा प्रार्थी हैं।
We acknowledge the unacceptable history of workplace bullying, sexual harassment, and sexual assault in Commonwealth parliamentary workplaces. We say sorry.
यौन उत्पीड़न या दुर्व्यवहार पर अधिक जानकारी या सहायता के लिए कॉल करें 1-800-RESPECT यानी 1-800-737-732 पर। देश में कोरोना वायरस की स्थिति पर बात करें तो न्यू साउथ वेल्स में आज 18 कोरोना संबंधी मृत्यु और 9,690 नए कोरोना मामले दर्ज किए गए हैं। राज्य में आज लगातार चौथे दिन 10,000 से कम नए कोरोना मामले सामने आए हैं। राज्य में फिलहाल 2,068 लोग कोरोना से संक्रमित होकर अस्पताल में भर्ती हैं, जिनमें से 132 गहन चिकित्सा केंद्र में देखभाल पा रहे हैं। न्यू साउथ वेल्स की 44% योग्य जनसंख्या बूस्टर खुराक पा चुकी है। मुख्य स्वास्थ्य अधिकारी कैरी चैंट का कहना है कि कुछ लोगों को टीके की चौथी खुराक की आवश्यकता भी पड़ सकती है।
If they've got underlying health conditions that suppress their immune system, examples might be transplant recipients or people on particular chemotherapy. So please do not consider that you've completed the journey with vaccination at the moment until you've had 3 for the majority or 4 for those with underlying health conditions.
वहीं विक्टोरिया सरकार अपनी रैपिड एंटीजन जांच व्यवस्था को अर्ली चाइल्डहुड एजुकेशन और देखभाल व्यवस्थाओं में विस्तारित कर रही है। डे केयर जाने वाले 3 से 5 साल की उम्र के बच्चों के परिवारों को रैपिड टेस्ट की सप्ताह में 2 बार पेशकश की जाएगी, हालांकि ये उनके लिए अनिवार्य नहीं होगा। अगले 1.5 हफ्ते में 1.6 मिलियन टेस्ट किटें किंडरगार्टन में पहुंचाई जाएंगी। बाद में ये सहूलियत दूसरी बाल देखभाल व्यवस्थाओं में भी विस्तारित की जाएगी। ये नई आपूर्ति डे केयर और किंडरगार्टन स्टाफ को दी जाने वाले 9,43,000 टेस्ट किटों के अतिरिक्त है। प्रीमियर डैनियल एंड्रूज का कहना है कि इस कदम से अभिभावकों को मानसिक शांति दी जा सकेगी।
About whether their child has got this virus. It is wildly infectious. It can, particularly amongst young people, you can have it and not necessarily present with any symptoms. So this expansion of our school rapid antigen test program to kinders and childcare for students and our smallest Victorians, that's a great boost forward.
वहीं क्वींसलैंड ने आज 12 कोरोना संबंधी मृत्यु दर्ज की हैं, जिनमें से 9 एज्ड केयर निवासी थे। इनमें से किसी को भी बूस्टर खुराक नहीं प्राप्त थी और 3 को कोरोना रोधी टीका नहीं प्राप्त था। इन 12 व्यक्तियों में से 11 60 से 90 वर्ष की आयु के बीच थे और 12वें व्यक्ति अपने 30 के दशक में थे। मुख्य स्वास्थ्य अधिकारी जॉन जेरार्ड का कहना है कि यह जवान मृत्यु एक अपवाद मामला है। और अब अंतर्राष्ट्रीय खबरें। कनाडा की राजधानी ओटावा में जारी कोरोना प्रतिबंधों के खिलाफ प्रदर्शन अब अपने 10वें दिन में प्रवेश कर गया है। शहर के मेयर ने इसी के साथ आपातकाल की घोषणा भी कर दी है। सप्ताहांत पर प्रदर्शनकारियों की भीड़ में कमी देखी गई, लेकिन फ्रीडम ट्रक कॉन्वॉय नामक प्रदर्शन समूह अब भी हॉर्न बजाकर और यातायात बाधित कर विरोध जारी रख रहा है। ओटावा पुलिस चीफ पीटर स्लॉली का कहना है कि पुलिस लोगों को गिरफ्तार कर रही है और उन्हें प्रदर्शनकारियों के पास से 1,000 लीटर प्रोपेन और दूसरे ईंधन मिले हैं। और अब खबरें भारत से। भारत में कोरोना का प्रभाव अब पहले से कम हो गया है। करीब 1 महीने के बाद लगातार दूसरे दिन कोरोना के नए मामले 1 लाख से कम दर्ज किए गए हैं। देश में पिछले 24 घंटों में 67,597 नए कोरोना केस सामने आए हैं और 1,188 संक्रमितों की जान भी गई है। अच्छी बात यह है कि पिछले 24 घंटों में 1,80,456 लोग कोरोना से ठीक भी हुए हैं, यानी 1,14,000 एक्टिव केस कम हो गए हैं। कोरोना महामारी की शुरुआत से लेकर अब तक कुल 4,23,29,611 भारतीय संक्रमित हुए हैं और इनमें से 5,04,062 लोगों की मृत्यु भी हुई है। कोरोना की तीसरी लहर बनकर आए ओमिक्रॉन के मामलों में गिरावट के बाद भारतीय सुप्रीम कोर्ट में फिर से फिजिकल सुनवाई शुरू करने का फैसला लिया गया है। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया और अन्य जजों ने फैसला लिया है कि पहले की तरह ही हफ्ते में 2 दिन फिजिकल सुनवाई की जाएगी। इसके लिए बुधवार और गुरुवार का दिन निर्धारित किया गया है। वहीं सोमवार और शुक्रवार को वर्चुअल सुनवाई हुआ करेगी, जबकि मंगलवार को हाइब्रिड सुनवाई होगी। और अब डॉलर का हाल। आज यानी मंगलवार को ये खबर लिखे जाने तक एक ऑस्ट्रेलियाई डॉलर की भारतीय रुपयों में कीमत 53.26 रुपये और एक अमरीकी डॉलर की तुलना में कीमत 71 सेंट्स थी। और अब खबरें खेल के मैदान से। ऑस्ट्रेलिया महिला एशेस की मल्टी फॉर्मेट सीरीज के आखिरी मैच में अजेय पहुंच गया है। जीत का कलश ऑस्ट्रेलिया पहले ही सुनिश्चित कर चुका है, पर ये कप्तान मैग लैनिंग के खेमे के पास 3 मैच के वनडे इंटरनेशनल में सुपड़ा साफ करने का मौका है। इंग्लैंड सारे ग्रीष्म सत्र में दोनों महिला और पुरुष स्पर्धाओं में एक भी मैच नहीं जीत सका है। और अंत में एक नज़र कल यानी बुधवार को देश के प्रमुख शहरों के मौसम के हाल पर। पर्थ में कल धूप ही धूप रहेगी। यहाँ अधिकतम तापमान 29 जबकि न्यूनतम 16 डिग्री सेल्सियस रह सकता है। एडिलेड में धूप छाव का मौसम रहेगा। यहाँ अधिकतम तापमान 25 जबकि न्यूनतम 17 डिग्री सेल्सियस रह सकता है। मेलबर्न में आंशिक रूप से बादल छाए रहेंगे। यहाँ अधिकतम तापमान 28 जबकि न्यूनतम 20 डिग्री सेल्सियस रहने का अनुमान है। देश की राजधानी कैनबरा में अधिकांश रूप से धूप खिली रहेगी। यहाँ अधिकतम तापमान 28 जबकि न्यूनतम 11 डिग्री सेल्सियस रह सकता है। सिडनी में कल धूप ही धूप है। यहाँ अधिकतम तापमान 31 जबकि न्यूनतम 17 डिग्री सेल्सियस रह सकता है। ब्रिस्बेन में भी धूप खिली रहेगी। अधिकतम तापमान 31 जबकि न्यूनतम 19 डिग्री सेल्सियस रह सकता है। डार्विन में कल हल्की फुल्की बौछार पड़ सकती है। अधिकतम तापमान 32 जबकि न्यूनतम 24 डिग्री सेल्सियस रह सकता है। भारत की राजधानी नई दिल्ली में कल बारिश की आशंका है। दिल्ली का अधिकतम तापमान 16 जबकि न्यूनतम 9 डिग्री सेल्सियस रह सकता है। समाचार में आज इतना ही। नमस्कार।